زبان بہت سے الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، مگر کوئی زبان اپنے آپ میں خالص نہیں ہوتی، یعنی ہر زبان پر دوسری زبان یا زبانوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اکثر لفظوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالص نہیں۔ اگر یہ اردو میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو ان کی آوازیں اور ان کے معنی عربی، فارسی یا سنسکرت وغیرہ زبانوں سے اردو میں آتے ہیں۔ لفظوں میں آوازوں اور معنوں کی تبدیلیاں فطری اور لازمی ہیں، یہ اچانک ہی سامنے نہیں آتیں، ان تبدیلیوں کو وجود میں آنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں۔ ہماری زبان اردو ہے، اردو نے بھی دوسری بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں سے الفاظ لیے ہیں۔ ان لفظوں کو اپناتے ہوئے اردو میں صوتی اور معنوی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی ہیں۔ آج ہم جو مضمون سننے والے ہیں وہ زبان میں ایسی ہی تبدیلیوں کے بارے میں بڑے دلچسپ انداز سے ایک بڑے اہم اصول کو متعارف کرایا ہے۔ یہ مضمون لکھا ہے سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو دیسی نا بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد میں بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سماجی روایت کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر بہار کے مختلف مدرسوں میں داخل کیے گئے۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہوا۔ سید سلیمان نے سن 1901 میں یہاں داخلہ لیا اور کئی علوم میں دسترس حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال میں ادارت کی۔ پھر کسی وجہ سے یہ ملازمت چھوڑ کر وہ پونہ مہاراشٹر چلے آئے، جہاں واڑیا کالج میں انہیں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا۔ یہیں انہوں نے عبرانی اور انگریزی زبانوں میں استعداد پیدا کی۔ مولانا شبلی کے اصرار پر سید سلیمان ندوی نے اعظم گڑھ میں شبلی کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین کی ذمہ داری سنبھالی۔ سید سلیمان ندوی ایک بلند پایا مصنف تھے۔ انہوں نے مذہب و فلسفہ، تاریخ اور زبان و ادب میں اعلیٰ پائے کے تنقیدی اور تحقیقی مقالات لکھے۔ سیرت حضرت عائشہ، عرض القرآن، خطبات مدارس، نقوش سلیمانی وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ مولانا شبلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہے تھے، لیکن بیماری نے انہیں یہ کام مکمل نہ کرنے دیا۔ انہوں نے سید صاحب سے اصرار کیا کہ اسے مکمل کر دیں۔ سید صاحب نے 6 جلدیں مزید لکھ کر اسے مکمل کیا۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے کراچی میں سن 1953 میں وفات پائی۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا مضمون تہنید۔ تہنید کے اگر ہم ٹھیٹھ معنی کریں تو ہندیانہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح اصل میں عربوں سے چلی۔ وہ جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر خراط کر اس کو عربی بنا ڈالتے تھے تو وہ اپنے اس عمل کو تعریب کہتے تھے۔ یہی قاعدہ فارسیوں نے اپنی زبان میں جاری کیا تو اس کی تفریض کر کے اسے فارسی بنا لیا۔ جب اہل ہند یعنی کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر تراش خراش کر کے اپنی زبان میں ملا لیں تو اسی کو تہنید کہیں گے۔ یہ اصول زبانوں کے بڑھنے اور پھلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ قریب قریب دنیا کے سبھی زبانوں میں چلتا ہے اور اس کے معنی بغیر ممکن ہی نہیں کہ زبان ترقی کر سکے۔ بات یہ ہے کہ زبان جامد چیز نہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی پھلتی اور عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ جو زبان بڑھنا چاہے گی اس کو دنیا کی دوسری زبانوں سے سروکار رکھنا پڑے گا، اور قوموں کے میل و جول کے ساتھ ان کی بولیوں اور لفظوں کی آمد و رفت بھی لگی رہے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں دوسری زبانوں کے لفظ شامل ہوتے رہیں گے۔ ہر زبان کے لفظوں میں حرفوں کی خاص ترتیب اور اس ترتیب سے خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح انسان سب برابر ہیں، फिर भी फरंगी, हबशी, हिंदी, चीनी, तुर्की सबकी शक्लें एक सी नहीं होती। हर एक का रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता। यही मुख्तलिफ बोलियों और इनके लफ्ज़ों का हाल है। इसीलिए एक कौम का आदमी जब दूसरी कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो उसकी ज़बान की फितरत मजबूर करती है कि इरादे और एहसास के बग़ैर इसकी शक्ल बदल दे। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी खौ कुछ ही करे, वो हमारे हिंदी हरफों को कभी ना बोल सकेगा, वो इसको कुछ ना कुछ बदल देगा और ना वो हमारे लहजे से हमारे लफ्ज़ों को निकालेगा, वो इसमें भी कुछ हेर फेर करेगा। यही हाल हिंदियों का भी है। अरबी के ख़ास हरूफ वो अदा नहीं कर सकते, ऐन, हमज़ा और अलिफ में, और से, सौत और सीन में, और ते और तोए में फ़र्क नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरी ज़बान का जो लफ्ज़ हमारे यहाँ आएगा वो जब तक अपनी बेगानगी छोड़कर बिल्कुल घरेलू ना बन जाएगा वो हमारे देश में रह नहीं सकता। यही वजह है कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह के जो हज़ारों लफ्ज़ हमारी ज़बान में आ गए हैं वो हमारी ज़बान के कायदों पर चढ़कर हमारी ज़बान की शक्ल व सूरत इख्तियार करने पर मजबूर हैं। अरबी का सही लफ्ज़ तमनी है, मगर फारस वालों ने इसको लिया तो तमन्ना कर दिया और हमने भी इसी को कबूल किया। अरबी तमाशी को ईरानियों ने तमाशा किया और हमको भी यही तमाशा पसंद आया। लालटेन की असल लेंटर्न है, मगर हमको लालटेन ही की रोशनी पसंद है। लफ्ज़ तबादला अरबी के लिहाज से गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी ज़बान में ये सही है। उसको छोड़कर मुबादला या तबादल बुलवाने की कोशिश ज़बरदस्ती है। इसी से किसी ज़बान की खुद मुख्तियाराना हुकूमत का पता चलता है। लफ्ज़ ख्वा किसी कौम और मुल्क के हों, जब वो दूसरी कौम और मुल्क की ज़बान में चले जाते हैं तो उनकी मिसाल इन लोगों सी है जो पैदा कहीं हुए हों लेकिन जब किसी दूसरे मुल्क की रियाया बन जाती हैं तो इसी दूसरे मुल्क के कायदे और कानून इन पर चला करते हैं। इस वक्त ये नहीं देखा जाता कि उनकी पैदाइश कहाँ की है और ये पहले किसकी रियाया थे। किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने के बाद हमको हक है कि हम उसके वो मायने समझें जो असल मायने से मजाज के तौर पर या इसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़बान में पैदा हो गए हैं। इसी फ़िक्रे में देखिए कि वजह अरबी लफ्ज़ है। अरबी में इसके मायने मुँह के हैं, इससे रुख के मायने पैदा हुए और इससे सबब के मायने पैदा हो गए। खुद सबब क्या है? अरबी में इसके मायने रस्सी और डोरी के हैं जिससे किसी को बांधा जाए, इससे अरबी में ज़रिया के मायने पैदा हो गए। लफ्ज़ नकद को तो देखिए कि ये क्या है, नकद के अरबी मायने परखने के हैं। इसी से रिव्यू के मायने में आजकल नकद या तनखीद बोलते हैं, चूँकि परखे सिक्के जाते हैं इसी से फ़ारसी में नकद के मायने सिक्के के हो गए और दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं, इसलिए उर्दू में नकद दाम के मायने इस दाम के हुए जो फौरन दिए जाएं, और नकद और उधार दो मुकाबिल के उर्दू लफ्ज़ हो गए। इलाक़े हिंदुस्तान में ज़मींदारी के गांव को कहते हैं। अरबी में इसके मायने लगाव के हैं, इसी लगाव से हर चीज़ जिससे आपको लगाव है आपका इलाका है। गदर के मायने अरबी में बेवफाई करने के हैं, इससे इस बेवफाई को कहने लगे जो फ़ौज अपने अहद को तोड़कर अपने अफसरों से करे, इस फौजी बेवफाई का नतीजा बदमनी है। एक बादशाह की जगह पर जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता था तो इसके लिए अरबी लफ्ज़ जुलूस गैर अरबों ने इस्तेमाल किया जिसके मायने बैठने के हैं, और साले जुलूस तख्त नशीनी के साल की इस्तेलाह बनी। और चूंकि जब नया बादशाह पहली दफ़ा तख्त पर बैठता था तो तुजक व एहतशाम और लाव लश्कर के साथ निकलता था, तो हम हिंदुस्तानी तुजक व एहतशाम के साथ किसी मजमूए के निकलने को जुलूस कहने लगे। इसको अरबी से कोई ताल्लुक नहीं। और जब बादशाह और हाकिम दरबार में बैठे तो हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जिसके मैंने बिठाने के हैं, और अब नए ज़माने में अंजुमनों और जलसों के भी इजलास होने लगे। जिस जगह बैठें, अरबी में इसको मजलिस कहते हैं। बाज़ उल्मा और सूफिया ने यह तरीक़ा इख्तियार किया था कि ख़ास दिनों में बैठकर लोगों को वाज़ व नसीहत किया करते थे और दर्स देते थे। इससे इस किस्म की नशिस्त और फिर इस नशिस्त की तकरीरों को मजलिस कहने लगे। हिंदुस्तान में ऐसी नशिस्तों को कहते हैं जिनमें लोग मजहबी और इल्मी तकरीरें करें या मरसिये पढ़ें, और इससे हमने इल्म मजलिस बना लिया, जिसमें तहजीब व शाइस्तगी के साथ मजलिसों में उठने बैठने और सलीका और दिलचस्पी की बातें करने के ढंग सिखाए गए। दौलत अरबी लफ्ज़ है, मायने एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। अरब में जब मुख्तलिफ सल्तनतें यक के बाद दिगरे बनी और मिटी तो सल्तनत को दौलत का नाम दिया गया और जमा दौल बनाई गई। इन महीनों में आज भी दौलत बरतानिया और दौल यूरोप हम बोलते हैं, सल्तनत और बादशाही खुशकिस्मती से हाथ आती है, इसलिए ईरानी दौलत को खुशकिस्मती के महीनों में बोलते हैं, जिसकी यादगार फारसी की बदौलत हमारे हिंदुस्तान में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाता है, जिसे कहते हैं आपकी बदौलत ये मिला और फिर बदौलत ज़रिया के महीने में हो गया। खुशकिस्मती की बड़ी निशानी ज़र व माल है, इसलिए कि यह ज़र व माल भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसको भी दौलत कहने लगे, और इससे दौलत, दौलतमंद और दौलतमंदी के लफ्ज़ हिंदुस्तानी को हाथ आए। अरबी में गुस्से के मायने हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के हैं। हिंदुस्तान में इसके मायने गैज़ व गज़ब के हो गए। खफा फारसी में खफा है और मायने वही गले में अटकने और फंसने के हैं। हिंदुस्तानी में खफा होना नाराज़ होने के मायने में है। बाज़ लफ्ज़ ख्यालात की बदौलत हाथ आए हैं। अरबी में फलक आसमान को कहते हैं, चूँकि नजूम और ज्योतिष ने हमको यकीन दिलाया है कि हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा हैं, इससे हमने फलक से फलाकत बनाया और इससे फारसी की तरकीब देकर फलाकत ज़दा, फलाकत का मारा क्या, और फिर इसको अरबी लफ्ज़ समझकर इसका मफूल मफलूक बना लिया और अरबी इजाफत देकर मफलूकुल हाल कह दिया, हालांकि इसके इन मायनों को अरब जानता भी नहीं। इस किस्म के हज़ारों अरबी लफ्ज़ हैं जो अपने ख़ास मायनों में हमारी ज़बान के ख़ास लफ्ज़ हो गए हैं। यही हाल फ़ारसी का भी है। फ़ारसी के बहुत से लफ्ज़ और तरकीबें हैं जिनको हमने अपने हिंदुस्तानी मायनों के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ बना लिया है। फ़ारसी में दान लगाकर ज़र्ब बनता है, जैसे खाकदान यानि ज़मीन। हिंदुस्तानी में इससे हमने 20 लफ्ज़ बनाए, जैसे पानदान, उगालदान, खासदान, अतरदान, कलमदान, जुजदान, चायदान, दूधदान, शकरदान, रोशनदान, सिंगारदान, शमादान। तस्गीर के लिए दान को हमने कभी दानी भी कर दिया, जैसे सुरमैदानी, गोंददानी, मच्छरदानी, तिलेदानी वगैरह। तिले दाने से मुराद सुई तागा रखने के लिए जो डिब्बा इस्तेमाल होता है, उसे तिले दाने कहते हैं। हिंदुस्तानी ने यही अमल हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ किया है। हिंदी और संस्कृत से लफ्ज़ों को अपनाने के लिए इनकी शक्लें बदली हैं, इनको हल्का किया है, इनकी तरकीबों से नए नए लफ्ज़ बनाए हैं। गंगा और जमुना दो दरियाओं के नाम हैं। सोने चांदी के मिलान से जो नक्काशी की जाए वो गंगा जमनी है। लफ्ज़ ब्राह्मण था जो ज़रा भारी था, इसको हमारी ज़बान ने बरहेमन कर दिया। इसी तरह गुण को गन करके इसको हल्का कर दिया। बरखा रुत ने बरसात की शक्ल इख्तियार की। विचार विचार हो गया और सोच विचार के साथ बोला जाने लगा। आशा ने आँस होकर ये मिसल कहलवाई कि जब तक सांस है तब तक आस है। इस तरह हिंदी और संस्कृत के लातेदाद लफ्ज़ों को हिंदुस्तानी ने ज़रा हेर फेर से अपने रंग में रंग कर इन पर नया रंग चढ़ा दिया है। गर्ज अरबी फारसी और संस्कृत नस्ल के इन हिंदुस्तानी बच्चों की तादाद बेशुमार है और हर खुद मुख्तार ज़बान को इसका हक़ है कि वो दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को अपनी रियाया बनाने के लिए इनके साथ ये सलूक करेगा।